एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तूने सिखाई है हमें ये आसमानी
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं, हमारे मनों को खोल दे, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि हम उसे समझ करके तेरे राह में चलने सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे रास्ता में अगुवाई कर। और पिता परमेश्वर मेरे संग हो, तेरा आत्मा दे और तेरा सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है आज हम कैसे हैं। आइए हम पढ़े पवित्र बाइबल वचन से जो मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3:20 पद में। यहाँ पर कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। एक एक विश्वासी मिलकर कलीसिया बनाता है। प्रत्येक कलीसिया आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक कैसे पहुँच सकती है और जीवन की सांसारिक धारा में डूबने से कैसे बच सकती है। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को इसे जानने की आवश्यकता है। हम कैसे हैं? क्या हम व्यक्तिगत तौर पर और कलीसिया के तौर पर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या हम वही हैं? क्या हम वास्तविक तौर में बढ़ रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ताओं और उनकी शिक्षाओं के बारे में यीशु की भविष्यवाणी का सारांश हम पाते हैं मती 24:4-5 पद और 24:11-13 और 24 और मती 7:15-20 में। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है मसीह हमें ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या बताना चाहते थे? यह देखते हुए कि वे भेड़ों के भेष में आएंगे लेकिन भेड़ियों के समान खूंखार होंगे। यह वह समय है जिसकी यीशु ने अपने दूसरे आगमन से ठीक पहले भविष्यवाणी की थी, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, कहता है मत्ती 24:13। हम झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचान सकते हैं और उनसे सावधान रह सकते हैं, उनके कार्यों और उनके आचरण से? क्या वे परमेश्वर के संपूर्ण वचन का पालन करते हैं या नहीं? मत्ती 7:15-20 में हम पढ़ते हैं, उनके फलों से तुम जान पाओगे कि क्या वे वास्तविक हैं, क्या वे सच्चे परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, क्या वे बाइबल की सच्चाई सिखाते हैं। या परीक्षा है यशायाह 8:20 में प्राप्त होती है। यही उनकी शिक्षाओं को पहचानने और उनका खंडन करने की कुंजी है। कई सच्चे लोग अलग अलग कलीसियाओं से जुड़े हैं जो ऐसी बातें सिखाते हैं जो बाइबल में नहीं है, इसलिए सत्य उनके लिए छिपा और अज्ञात रहता है। लेकिन वह दिन आएगा जब वे सत्य की खोज करेंगे और उसे पा लेंगे यदि वे उसे पूरे मन हृदय से ढूंढेंगे समय के रहते हुए। बाइबल कहती है तो ऐसा में वे परमेश्वर को पा सकेंगे। पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के अंतिम दर्शन से पहले प्रभु के लोगों के बीच आदिम ईश्वरीयता का ऐसा पुनरुत्थान होगा जैसा प्रेरितों के समय से नहीं देखा गया है। परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ उसकी संतानों पर उंडेली जाएगी। उस समय बहुत से लोग उन कलीसियाओं से अलग हो जाएंगे जिनमें इस संसार के प्रेम ने परमेश्वर और उसके वचन के प्रति प्रेम का स्थान ले लिया है। हमारे विश्वास का एकमात्र आधार क्या है? पहला कुरंथियों 3:11 कहता है, हमारे विश्वास का एकमात्र आधार प्रभु यीशु मसीह है। शैतान जहां झूठी शिक्षाओं के जरिए अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, वहीं वह परमेश्वर की संतानों के विश्वास को कमजोर करने के लिए हृदय के भीतर भी काम कर रहा है। फिर संदेह, धार्मिक अनिश्चितता और उदासीनता आंतरिक जीवन पर तब तक हावी हो सकती है जब तक कि विश्वास की नींव अपनी दृढ़ता खोकर डगमगाने ना लगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की दृढ़ नींव स्थिर है, जैसा कि हम पढ़ते हैं 2 तिमोथियस 2:19 में, हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वह कभी नहीं बदलता। हम यह प्रतिज्ञा पाते हैं 13:8 में, वह अपने वादों को पूरा करता है 2 कुरिन्थियों 1:20, और हमसे सनातन प्रेम करता है 31:3 में हम पाते हैं। 31:3 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति सनातन प्रेम है। 7:24-27 और नीति वचन 10:25 हमें दृढ़ आध्यात्मिक नींव के महत्व को समझने में मदद करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक नींव उस चट्टान पर होना चाहिए जो कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह वह जीवता चट्टान है जिस पर हम अपना जीवन का, अपना घर का नींव रखेंगे तो कभी नहीं गिरेगा। हमें संसारिकता और धर्म त्याग से स्वतंत्र होना है। 1 तिमोथियस 4:1 हम अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में सीखते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। जैसे जैसे तूफान निकट आता है, एक बड़ा वर्ग जो तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास रखता है लेकिन सत्य के प्रति आज्ञाकारिता के माध्यम से पवित्र नहीं हुआ है, अपना पद त्याग देता है और विपक्ष की पंक्ति में शामिल हो जाता है। कहती है बहन एलन वाइट अपनी पुस्तक महान विवाद में पृष्ठ 608 में, दुख की बात है कि हमारे कई सदस्य कुछ वर्षों की सार्थक संगति के बाद कलीसिया, विश्वास और प्रभु को त्याग देंगे। लेकिन प्यारो, पौलुस हमें रोमियों 8:35-39 में आश्वासन देता है। यहाँ वह कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कितना अद्भुत और महान प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमें कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता है जो इस दुनिया में है। प्यारो, रोमियों 13:11-14 के अनुसार हमें अंधकार के कामों को तोड़ देना है और उनके स्थान पर ज्योति के हथियार पहनना है। हमें लौदिकिया के कलीसिया से सबक सीखना है जो कि मिलता है प्रकाशित वाक्या 3:15-17 में। लौदिकिया की ऐतिहासिक कलीसिया हमारे समय की कलीसिया का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य में इसके बाद कोई और कलीसिया नहीं है, इसलिए इस कलीसिया का संदेश सिर्फ हमारे बारे में नहीं बल्कि हमारे लिए है। मसीह के लौदिकिया को कहे गए पहले शब्द प्रकाशित वाक्य 3:15-16 में दर्ज है। ना ठंडा होना और ना गर्म होना किसका प्रतीक है? इससे यह प्रतीत होता है कि वे लोग परमेश्वर के काम में सरगर्म नहीं है, वे ठंडे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है कि कलीसिया इसमें क्या बदलाव लाए? ना ठंडा ना गर्म। ऐसा माना जाता है कि यह लाक्षणिक अभिव्यक्ति लौदिकिया के मसीहों के लिए विशेष रूप से अर्थपूर्ण रही होगी। उस क्षेत्र का एक प्रमुख स्थल चिन्ह एक झरना था, जिसके ऊपर हीरापोलिस के गर्म झरनों से एक धारा बहती थी, जिससे खनिज जमा होते थे। लौदिकिया का जल स्रोत यह गर्म या ठंडा झरना नहीं था, बल्कि एक जल मीनार थी जो एक जल सेतु से भरी हुई थी, जिसमें इसी तरह के खनिज जल के जमाव दिखाई देते हैं जो शायद गर्म था। अपने शब्दों में लौदिकिया की कलीसिया की आत्मिक स्थिति को आप कैसे वर्णन करेंगे? प्रकाशित वाक्य 3:17 में हमें देखने को मिलता है। लौदिकिया के लोग अपने बारे में बहुत ऊंचा समझते थे, जैसा कि हम रोमियो 12:3 को पढ़कर समझ सकते हैं। हमें नम्र होना है, क्योंकि वे लोग, लौदिकिया के लोग, मानते थे कि वे ठीक हैं। वे अपने आप को जो समझते थे उससे संतुष्ट थे। परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के बजाय स्वयं पर निर्भर हो गए और वे शत्रुओं के शिकार बनते गए। अपने आप में धन दौलत कोई बुराई नहीं है, हालांकि धन दौलत का मालिक अहंकार और आत्मसंतुष्टि के प्रलोभनों का शिकार हो जाता है, और इनसे बचाव का एकमात्र उपाय आध्यात्मिक विनम्रता है। महत्वपूर्ण सत्यों को केवल बौद्धिक स्वीकृति के स्तर पर ही रखना, लेकिन आत्मा में प्रवेश न करने देना आध्यात्मिक अभिमान और धार्मिक कट्टरता की ओर ले जाता है। यहाँ तक कि परमेश्वर की कलीसिया, जो अपने संगठन की संरचना में मजबूत है और सत्य के रत्नों से समृद्ध है, आसानी से एक सैद्धांतिक कट्टरवादी बन सकती है और सत्य के अपने धन पर अनैतिक रूप से गर्व कर सकती है। लूका 18:9-14 में एक दृष्टांत दिए गए हैं। वहां पर एक व्यक्ति नम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, परमेश्वर से दया मांगता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है। वह कहता है कि वह दशमांश देता है, वह उपवास करता है, वह अच्छा है, दूसरों जैसा नहीं है, अपने आप का बड़ाई कर रहा था, सोचता है कि वह बहुत अच्छा है, परमेश्वर के नज़र में अच्छा है। लेकिन अंत में दृष्टांत में हम पाते हैं कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता है, बल्कि जो दया के लिए प्रार्थना कर रहा था, अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा था, परमेश्वर उसी को स्वीकार किया। प्यारो, प्रकाशित वाक्य 3:18-19 में हमें जो सलाह दिए गए हैं, ईश्वरीय उपाय, उसको हमें अपनाना है। हम आज कैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें फिर से लौदिकिया की कलीसिया को दिए गए परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है, उसका अध्ययन करना है। हम कुछ समय निकाल करके इस कलीसिया को दिए गए परमेश्वर के उपदेश को पुनर्विचार करें। हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे और देखेंगे कि लौदिकिया के लोगों की आध्यात्मिक हालत के लिए परमेश्वर ने क्या उपाय किया है। परमेश्वर के उपचार का प्रत्येक घटक किस चीज का प्रतीक करता है? प्रकाशित वाक्य 3:18 में हम पाते हैं परमेश्वर उन्हें, जो सोचते थे कि वह लोग धनी है, परमेश्वर उन्हें कहा कि वह नंगे हैं, गरीब है, और परमेश्वर उन्हें सलाह दिया कि वह सोना मोल ले परमेश्वर से, जो उन्हें मुफ्त का दे रहा था। और यह सोना क्या को दर्शाता है? बाइबल में हम पाते हैं 1 तीमोथियस 6:18 में, याकूब 2:5 में और गलातियों 5:6 में कि परमेश्वर जो सोना उनको देना चाहता है वह प्रेम, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम और विश्वास को दर्शाता है, और सफेद वस्त्र उन्हें लेने के लिए कहता है। गलातियों 3:27 में कहता है कि हम यीशु को पहन ले, यीशु की धार्मिकता को ले ले, उसकी धार्मिकता को अपनाएं, और आंखों पर सुरमा लगाने के लिए कहता है। यह यूहन्ना 16 का 8 से 11 में हमें समझाया गया है। यह इसे पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि आत्मा के द्वारा वास्तविकता और सच्चाई को समझने की शक्ति यह हमें चाहिए। इसके लिए हम परमेश्वर से मांगे, इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। लौदिकिया की आत्मिक बीमारी के लिए परमेश्वर का 3 भाग्य इलाज 3 कारणों से स्पष्ट था। पहला, लौडिसिया या लौदिकिया अपने समय के महान बैंकिंग और वित्तीय शहरों में से एक था। कहा जाता है कि जब 60 ईस्वी में इस शहर में भूकंप आया तो इसके संसाधनों ने इसे रोम से सरकारी सहायता लिए बिना पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया। दूसरा, लौदिकिया काली भेड़ों के ऊन से बने बाहरी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा, फ्रीजन देवता मेनकारू को सम्मान देने वाले लौदिकियाई मंदिर ने एक प्रसिद्ध चिकित्सा विद्यालय को सहायता प्रदान की जो पूरे विश्व में आंखों के लिए मरहम वितरित करता था। प्रकाशित वाक्य 3:15-18 में लौदिकिया की कलीसिया को ताड़ना देने के बाद परमेश्वर उन्हें आश्वासन दिया। उन्हें पहले कहा, पश्चाताप करो और उसके तरफ फिरो और उसके कहे हुए बातों को मानो तो परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। क्रिया एक वचन में है, पश्चाताप करो, जो एक चेतावनी कि व्यक्तिगत प्रकृति पर जोर देती है। उधार की तरह पश्चाताप कभी भी सामूहिक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। अतीत के लिए दुख और भविष्य के लिए उत्साह का यह नया दृष्टिकोण लौदिकिया कलीसिया के लिए मसीह का उद्देश्य है। जैसा कि हमने पहले देखा, लौदिकिया के लोगों ने परमेश्वर के सोने वस्त्र और नेत्र लार्वे की जगह अपने घटिया विकल्प इस्तेमाल किए थे। आपके जीवन में कौन सी चीजें आध्यात्मिक अस्वस्थता के लिए परमेश्वर के 3 भागों वाले इलाज की जगह ले ली है? हमारे हृदय के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में, यीशु घर घर जाकर प्रत्येक आत्मा के मंदिर के सामने खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं, मैं द्वार पर खड़ा हूं और दस्तक देता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:21 में उसने वादा किया है, जो विजय हासिल करेगा उसे वह अपने साथ सिंहासन पर बैठने के लिए मौका देगा। हमें यीशु की तरह जीत हासिल करनी होगी और प्रभु यीशु मसीह हमें बुराई और शैतान पर जीत हासिल करने के लिए अपना ताकत, अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य देता है। यह क्या ही खूबसूरत वादा है। मसीह को अपने हृदय में स्वागत करने के लिए आप आमंत्रित कीजिए। इफिसियों 3:14-21, यदि आपने पहले ही कर लिया होगा तो उसे आपके साथ रहने के लिए धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हैं, वे बाइबल में भी हैं, अपने प्रिय लोगों के बीच, और हम प्रकृति के अद्भुत नज़ारों में उनके प्रेम को पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या यीशु वही है जहां वे विशेष रूप से रहना चाहते हैं, हमारे हृदय में? प्रकाशित वाक्य 3:20, इफिसियों 3:17, अब वे एक स्वर्गीय व्यापारी की तरह हृदय के द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या हमें इस स्वर्गीय आगंतुक के लिए हृदय का द्वार नहीं खोलना चाहिए? प्यारो, हमें जल्द ही यीशु के लिए अपना हृदय का द्वार, अपना हृदय का मंदिर खोल देना चाहिए कि वो हमारे हृदय के मंदिर में आकर अपने धार्मिकता से भर दे, अपने आशीष से भर दे और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। प्यारो, प्रभु अपनी कलीसिया को अच्छी तरह जानते हैं और हमारी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में हमें सलाह देने में सक्षम है। प्रकाशित वाक्य 3:15, ऐसी सलाह के साथ साथ वह हमारी आध्यात्मिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपना निश्चित उपाय भी प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास एक स्थान प्राप्त होगा। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमें जो सलाह देते हैं कि वह हमारे हृदय में आना चाहते हैं, तो हम उसके आवाज को सुने, हमारे हृदय में आने दे, हमारे जीवन में वास करने दे। वह हमारे जीवन को उन्नतशील बनाएगा, आशीष से भर देगा, आत्मिक आशीष देगा और हमें परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार करेगा। आइए हम अपने हृदय को खोल दे, परमेश्वर का आत्मा को आने दे कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करे और हमारे साथ रहे, कि हम उसके साथ आत्मिक भोजन करें और हम सबों को प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गीय राज ले जाए। परमेश्वर हम सबों को, आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे आज के इस वचन के धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तू हमें ग्रहण कर जैसा तू चाहता है, जैसा तेरी इच्छा है कि तू हमारे जीवन में आना चाहता है और हमारे जीवन को आशीष से भर देना चाहता है पिता परमेश्वर। हम तेरे आवाज को सुने, तेरे स्वर को सुने और अपने हृदय को खोल दे, अपने जीवन में तुझे आने दे, तेरा आत्मा का बात को हम सुने ताकि तू हमारे अंदर वास करे और हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार करे पिता परमेश्वर। हम सबों को तू आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सोना ग्रहण।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अल्लाह और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।